Там она бы что там ставит, там ее на пути, с вами будет подаем, я не дам, ты сюда, ты там. Да если бы что-то человек там не пробует, я не все двое, ты когда я решила, за тебя в руках тебе. Хри Кришна, Хри Кришна, 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 Хри. Хри Рам, Хри Рам, Рам, Рам. Тоби, Бхагавад Гита ке антим чар слок, кем чарча каренге, अभी तक भगवान ने अर्जुन को भगवद गीता पूरा बता दिया और तत्पश्चात संजय बहुत प्रसन्न हुए। टेक्स्ट नंबर 70 जो था उसमें भगवान ने कहा कि मैं घोषित करता हूं कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वो अपनी बुद्धि से मेरा पूजन करता है। तो ये पर्टिकुलर श्लोक जो है भगवान ये कहते हैं कि जो पढ़ते हैं वो स्टडी करते, जैसे हमने कल बताया था कि हमारा ये कोर्ट जो है वो भी एक प्रकार का भगवान का पूजा था। इट वॉज लाइक वर्शिपिंग कृष्णा बाय दिस वे स्टडिंग भगवद गीता। और नाउ संजय अर्जुन ने कहा कि आई विल डू एग्जैक्टली व्हाट यू आर आस्किंग कैश्य वचनम तव। संजय ने कहा कि मुझे मेरे पूरे शरीर में रोमांच हो रहा है, ये उसका डायरेक्ट परिणाम प्राप्त हुआ उनको। अब 75 टेक्स्ट नंबर से गुरु शिष्य परंपरा किस तरह से काम करते हैं उसके विषय में संक्षिप्त वर्णन है, पढ़िए।
व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुहम बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी।
पहला पैराग्राफ पढ़िए, फर्स्ट पैराग्राफ।
व्यास संजय के गुरु थे और संजय स्वीकार करते थे कि व्यास की कृपा से ही वे भगवान को समझ सके। इसका अर्थ यह हुआ कि गुरु के माध्यम से ही कृष्ण को समझना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। गुरु स्वच्छ मध्यम है, यद्यपि अनुभव फिर भी प्रत्यक्ष ही होता है। गुरु परंपरा का यही रहस्य है। जब गुरु प्रमाणिक हो तो भगवद गीता का प्रत्यक्ष श्रवण किया जा सकता है, जैसा अर्जुन ने किया। संसार भर में अनेक योगी हैं, लेकिन कृष्ण योगेश्वर हैं। उन्होंने भगवद गीता में स्पष्ट उपदेश दिया है, मेरी शरण में आओ। जो ऐसा करता है वह सर्वोच्च योगी है। छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में इसकी पुष्टि हुई है, योगी नाम अपि सर्वेषां। नारद कृष्ण के शिष्य हैं और व्यास के गुरु, अतः व्यास अर्जुन के ही समान प्रमाणिक हैं, क्योंकि वे गुरु परंपरा में आते हैं। और संजय व्यास देव के शिष्य हैं, अतः व्यास की कृपा से संजय की इंद्रियां विमल हो सकी और वे कृष्ण का साक्षात दर्शन कर सके तथा उनकी वार्ता सुन सके। जो व्यक्ति कृष्ण का प्रत्यक्ष श्रवण करता है वह इस गुहम ज्ञान को समझ सकता है। यदि वह गुरु परंपरा में नहीं होता तो वह कृष्ण की वार्ता नहीं सुन सकता, अतः उसका ज्ञान सदैव अधूरा रहता है। विशेषता यहाँ तक भगवद गीता समझने का प्रश्न है। भगवद गीता में योग की समस्त पद्धतियां का, कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग का वर्णन हुआ है। श्री कृष्ण इन समस्त योगों के स्वामी हैं, लेकिन यह समझ लेना चाहिए कि जिस तरह अर्जुन कृष्ण को प्रत्यक्षत समझ सकने के लिए भाग्यशाली था, उसी प्रकार व्यास देव की कृपा से संजय भी कृष्ण को साक्षात सुनने में समर्थ हो सका। वस्तुतः कृष्ण से प्रत्यक्षत सुनने एवं व्यास जैसे गुरु के माध्यम से प्रत्यक्ष सुनने से में कोई अंतर नहीं है। गुरु भी व्यास देव का प्रतिनिधि होता है, अतः वैदिक पद्धति के अनुसार अपने गुरु के जन्म दिवस पर शिष्यगण व्यास पूजा नामक उत्सव दर्शाते हैं।
सो यहाँ पर ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि व्यास की कृपा से मैंने परम बातें परमेश्वर कृष्ण के मुख से कही जाती हुई सुनी। अर्थात डायरेक्टर संजय जो है वो क्वालिफाइड, एक रूप से देखा जाए तो व्यास की कृपा से क्वालिफाइड है, अन्यथा वो स्वयं क्वालिफाइड नहीं थे ये कृष्ण के द्वारा बोले गए वाक्य को सुनने के लिए। तो इसी तरह से हर एक भक्त जो होता है वो गुरु से, गुरु परंपरा के माध्यम से भगवान की सेवा करता है। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि अनुभव फिर भी प्रत्यक्ष होता है, दिस इज द सीक्रेट। क्या कह भगवान प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं कि गुरु के माध्यम से ही वो कृष्ण को समझना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। गुरु स्वच्छ माध्यम है, यद्यपि अनुभव फिर भी प्रत्यक्ष होता है। गुरु परंपरा का यही रहस्य है, दिस इज द सीक्रेट ऑफ डिसिप्लिन सक्सेस। इसका अर्थ ये होता है कि आप गुरु के माध्यम से सेवा करते हो, लेकिन वो सेवा आपकी प्रत्यक्ष रूप से की गई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑल्टर में या जैसे आप डीजी वर्शिप होती है तो कोई भी विग्रह है, गोविंदाई राधा माधव या राधा गोविंद जी विग्रह, तो ये विग्रह जो है उनमें और स्वयं भगवान में कोई अंतर नहीं है, वो बिल्कुल समान है। कई बार हम लोग ये गल हम भूल जाते हैं कि ये जो मार्बल का जो विग्रह है, ये विग्रह वास्तव में स्वयं भगवान है, साक्षात भगवान। और भक्त की हृदय की भावना के आधार पे वो प्रत्यक्ष रूप से वहां विद्यमान हो सकते हैं और कृषि प्रोकेट भी करते हैं, यहां तक की बात भी करते हैं। तो अभी प्रश्न ये होता है कि कोई पुजारी तो हजार होते हैं भगवान के सेवा करने वाले, तो ये जो पुजारी होते हैं, ये पुजारी अगर समझ लो कि हम पुजारी के रूप में सेवा कर रहे, तो क्या हम भगवान की साक्षात पूजा करने के लिए अपने आप को योग्य मानते हैं? अगर भक्त सोचेगा नहीं, मैं तो योग्य नहीं हूं, तो एक सीधा सा अनुभव हम कह सकते हैं कि अगर समझ लो कि आपकी राधा गोविंद जी मूर्ति है, आपको ये पता है कि ये मूर्ति है, इसलिए अधिकतर केस में ऐसा देखा जाता है कि पुजारी उनको मूर्ति के रूप में ही देखता हो अगर वो कमजोर है तो। लेकिन अगर ये बता दिया गया कि आज के दिन राधा गोविंद जी साक्षात यहाँ पर प्रकट हुए और वो खड़े हैं, तो अगर समझ लीजिए कि सामने, हमारे सामने चलायमान मूर्ति है, तो हम अपने आप को असमर्थ पाते हैं कि हम कैसे उनकी सेवा करेंगे। ये तो रोज का यही होना चाहिए भक्त का जो अनुभव कि विग्रह जो है वो साक्षात है। लेकिन हम जब भगवान की पूजा करते हैं या सेवा करते हैं, तो अर्चन विधि के अनुसार हम गुरु के आदेश से, गुरु से परमिशन लेकर के, गुरु के माध्यम से उनकी सेवा करते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये होता है कि अगर समझ लो कि दिया जलाते हैं आरती का, तो आरती का दिया हम जलाते हैं गुरु के माध्यम से, लेकिन आरती उतारना मेरा काम है। अर्थात वो अनुभव जो होता है, जो अनुभव है वो प्रत्यक्ष है, डायरेक्ट। तो वो अगर आप भगवान के चरण पखार रहे हैं, तो यदि भी आप कर रहे हो गुरु के थ्रू, गुरु के माध्यम से, लेकिन वो सेवा आपकी प्रत्यक्ष सेवा है। अर्थात उसको आपको हमें इसी तरह से करनी चाहिए जैसे कि आप प्रत्यक्ष डायरेक्ट सेवा कर रहे हैं, हमें उसी तरह से करना चाहिए। तो यहाँ पर व्यास की कृपा से मैंने ये सुना, लेकिन कैसे सुना? डायरेक्ट सुना, डायरेक्ट कृष्ण का आवाज सुना। अगर कोई भक्त गुरु परंपरा के माध्यम से कृष्ण की शरण में जाता है, तो कृष्ण का अनुभव, कृष्ण के मुख से द्वारा बोले गए शब्दों का आप कृष्ण की आवाज सुन सकते हो। कृष्ण के शरीर की जो सुगंध है, जैसे कर्पूर, अगुरु, चंदन, कस्तूरी, केसर, ये सबका जो मिला हुआ एक साथ जो सुगंध बनती है, वो सुगंध आप खुद सूंघ सकते हो, फिर कृष्ण के शरीर को स्पर्श कर सकते हो। लेकिन ये सब कुछ जो कोई अनुभव है, वो अनुभव प्रत्यक्ष तो होता है, लेकिन ये सेवा जो होती है, ये जो कनेक्शन होता है, वो गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से होता है। यही गुरु परम शिष्य परंपरा का रहस्य है कि जब तक कोई व्यक्ति गुरु के माध्यम से भगवान के पास नहीं जाता, तब तक भगवान उसको एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे कई बार एक एग्जांपल ये भी दिया जाता है कि जो वट वृक्ष होता है, उसको जन्म देने के लिए उसको उसके बीज को कोई चिड़िया खाती है, और चिड़िया जब टट्टी पास करती है और फिर वो टट्टी में से नया वटवृक्ष बन सकता है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट वटवृक्ष का बीज जमीन में डालोगे और उसको पानी डालोगे तो वो उगेगा नहीं। अर्थात कई बार देखा जाता है कि हम लोग ये गायत्री मंत्र सब जानते हैं कि ओम भूर्भुवस्व, सबको पता है कि ये गायत्री मंत्र है। तो कई बार हम सोचते हैं कि गायत्री मंत्र हम भी जब करते हैं उसमें कौन सी बड़ी बात है, ये लोग भी हमारे ब्राह्मण दीक्षित भक्त लोग भी करते हैं। लेकिन गायत्री मंत्र उसका जो पोटेंसी होता है, वो शक्ति तभी काम करती है जब वो गुरु के माध्यम से दिया गया हो। अन्यथा भले हजार बार गायत्री मंत्र जब करोगे, उसका परिणाम नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि गुरु के माध्यम से आपको प्राप्त नहीं हुआ है। इस तरह से कोई भी कार्य, भले एक बार गुरु के माध्यम से गायत्री मंत्र आपको प्राप्त हुआ, लेकिन उसके बाद उसकी जो असर होती है वो प्रत्यक्ष होती है, वो डायरेक्ट। आप गायत्री मंत्र जप करने का जो लाभ होता है, अर्थात आप कृष्ण को अनुभव कर सकते हो, ये प्रत्यक्ष होता है। दिस इज रियल, बट दिस इज थ्रू गुरु से, गुरु शिष्य परंपरा। इट्स नॉट ओनली गुरु, इट्स आवर एंटायर परंपरा। आपके गुरु महाराज सारी परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं सारे संसार में। जितने हमारे आचार्य परंपरा है, उन सबकी कृपा आपके गुरु के हाथ में होती है। वो चाहे तो दे सकते हैं। अर्थात रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी की कृपा जो है वो आपके गुरु के पास होती है।
प्रभु एक प्रश्न है। हरे कृष्ण।
लेट मी जस्ट फिनिश इट, इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद
ठीक है। ओके ओके।
भक्तिनाथ ठाकुर की जो कृपा है वो भी आपको गुरु शिष्य पर गुरु महाराज के पास मिल सकती है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा, मध्वाचार्य की कृपा, ब्रह्मा जी की कृपा, नारद मुनि की कृपा, भक्तिनाथ ठाकुर की, भक्ति सरस्वती की कृपा, इन सब की कृपा आप प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त कर सकते हो आपके गुरु महाराज के द्वारा। ये गुरु के पास एक पूरा सामर्थ्य है कि आपको पूरी परंपरा का कृपा दे सकते हैं, क्योंकि वो कृष्ण के साक्षात प्रतिनिधि है। और इसलिए गुरु से सुनने में और डायरेक्ट कृष्ण से सुनने में कोई अंतर नहीं है। हमें लगता है कि अर्जुन तो इतना भाग्यशाली था, उसने डायरेक्ट कृष्ण से, अब मैं तो मुझे तो कहा, मैं तो यहाँ आसपास में मेरे गुरु को ढूंढना पड़ेगा, और गुरु के पास जाकर के हम समझ सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद यहाँ कहते हैं कि आध्यात्मिक गुरु के वचनों में और कृष्ण के वचनों में कोई अंतर नहीं है। ये मान के चलो कि आपके गुरु के माध्यम से साक्षात कृष्ण ही आपसे वार्तालाप कर रहे हैं, वो ही बोल रहे हैं। एक्चुअली गुरु अपने मन से कुछ नहीं बोलते। कई बार में आपको लगेगा कि गुरु तो ठीक है, गुरु महाराज को जो ठीक लगा उन्होंने बोल दिया, लेकिन मुझे लगता है कि वो, ये सब अपराध युक्त भावना है। गुरु महाराज को जो ठीक लगा वो नहीं बोले, गुरु महाराज को कृष्ण ने इंस्पायर किया था ये बोलने के लिए और गुरु के मुख से कृष्ण ने ये बोला है। अभी आप कहेंगे नहीं लेकिन जी गुरु महाराज मेहनत देखा, गुरु महाराज अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, गुरु महाराज अपनी इच्छा से निर्णय लेकर के मुझे बताते हैं, लेकिन यहाँ पर द सीक्रेट है कि जो गुरु महाराज अपनी बुद्धि से अपनी इच्छा से आपको लगता है कि जो कुछ बताते हैं वास्तव में वो कृष्ण के द्वारा इंस्पायर किया गया होता है, कृष्ण के द्वारा इसका अनुमोदन हुआ होता है और कृष्ण ने ही उनको ये बात बताने के लिए आदेश दिया गया होता है। तो जनरली ये सीक्रेट आप जितना अधिक गुरु को समझोगे उतना अधिक आप इस चीज को समझ पाएंगे, क्योंकि आप मैंने तो खुद अनुभव ये किया है अपने जीवन में कि गुरु कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि गुरु कृष्ण से परमिशन लेकर के आपको बता रहे हैं कि ये चीज जैसे कृष्ण ने उनको कहा है, इसी तरह से आपको अनुभव भी होता है कृष्ण इज आस्किंग हिम एंड ही इज टेलिंग अस। सो इसमें कोई इसलिए कहा जाता है कि गुरु की जन्मदिन को व्यास पूजा मनाया जाता है, व्यास पूजा उत्सव रचाते इसका अर्थ होता है कि व्यास पूजा उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है, अर्थात गुरु की पूजा के माध्यम से हम सारी परंपरा की पूजा करते हैं। इसमें ऐसा नहीं कि ओ तो कैसा दिन होता है गुरु महाराज सबकी पूजा लेंगे सब उनके वखान करेंगे वाह महाराज वाह गुरु जी, इसका अर्थ ये नहीं होता है। इसका अर्थ होता है कि आप जितना आदर जितना पूजा सेवा आप अर्पण करते हो गुरु महाराज को, भले आप स्तुति करते हो गुरु महाराज की, लेकिन ये अनुभव जो होता है वो प्रत्यक्ष होता है, अर्थात आपकी सारी रिस्पेक्ट पूजा स्तुति प्रमाण आपके ऑफरिंग्स ये सब कुछ वास्तव में जाता है कृष्ण के पास व्यास के पास व्यास पूजा के रूप में। इसलिए वो तो केवल मैसेंजर है, वो आपकी बात को लेकर के आगे पहुंचाते हैं, आपके द्वारा रिस्पेक्ट होता है वो आगे पहुंचाते हैं और ऊपर से जो कृपा आती है वो आपको पहुंचाती है, माध्यम है वो लेकिन आपका अनुभव प्रत्यक्ष होता है। हाँ बताइए क्या प्रश्न था।
हरे कृष्ण, भगवान की जो सुगंध है और स्पर्श कर सकते हैं वो स्थिति भक्त में कब होती है?
वह ये जो स्थिति ऐसी तब में तब आती है कि जब भक्त के जो अनर्थ होते हैं उससे मुक्त हो जाता है या फिर कृष्ण स्वयं ये स्थिति उनको अनुभव करने की परमिशन दे या फिर आध्यात्मिक गुरु जब आपकी सेवा से पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाए तो इस तरह से वो भक्त शुद्ध हो सकता है, तभी वो भगवान की निजी जैसे ये स्टेप बाय स्टेप होता है, नाम उसके बाद होता है गुण उसके बाद रूप और उसके बाद लीला। तो सबसे पहले जो प्रकट होता है आपके सामने वो नाम प्रकट होता है, फिर आप आगे बढ़ते हो आपकी प्रोसेस आप प्रगति प्राप्त करते हो आपकी आध्यात्मिक स्थिति में, उसके बाद आप भगवान के गुण को अनुभव कर सकते हो। गुण को अनुभव करने का अर्थ होता है कि भगवान दयालु है, भगवान उनके जितने भी गुण है वो सब आप अनुभव कर सकते हो, भगवान की सुगंध ये है भगवान का, तो उनके गुण का अनुभव होता है। उसके बाद फिर आगे प्रगति होता है तब भगवान के रूप का अनुभव होता है, रूप का अनुभव होता है फिर आप भगवान को देख सकते हो भगवान के रूप को अनुभव कर सकते हो, और उसके बाद जब रूप प्रकाशित हो जाता है उसके बाद लीला प्रकाशित होती है, तब जाके लीला प्रकाशित होती है। तो जब रूप का दर्शन कराते तब धाम का दर्शन भी कराते और उसके पश्चात आपको लीला प्रकाशित करते हैं, लीला प्रकाशित करता है फिर आप कृष्ण की ग्वाल सखा के साथ की लीला, राधा रानी के गोपियों के साथ की लीला, नंद यशोदा के साथ की लीला, ये लीला को आप देख सकते हो अपनी आंखों से, यू कैन सी इट, आप अनुभव कर सकते हो उस लीलाओं का। तो या तो आंखों से या तो चिंतन से या हृदय में, इस तरह से अलग अलग प्रकार से इसका दर्शन हो सकता है। तो नाम गुण रूप लीला इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। और कोई प्रश्न? सो टेक्स्ट नंबर 76 में संजय अपने अनुभव को आगे कंटिन्यू करते हैं, पढ़िए।
हे राजन, जारे हूँ कृष्ण तथा अर्जुन वच्चे थयेला आ अद्भुत तथा पवित्र संवाद नु वारंवार स्मरण करू छू त्यारे प्रति क्षण हर्ष विभोर थई जाऊ छू।
सो छोटा तात्पर्य पढ़िए।
भगवत गीता नु ज्ञान एवं दिव्य छे के जे कोई अर्जुन तथा कृष्ण ना संवाद ने जानी ले छे ते पुण्यात्मा थई जाय छे अने आ संवाद ने भूली सकतो नथी। आ आध्यात्मिक जीवन नी दिव्य स्थिति छे। बीजी रीते कही सकाय के ज्यारे कोई मनुष्य गीता ने योग्य स्त्रोत पासे थी अर्थात प्रत्यक्ष कृष्ण पासे थी सांभळे छे त्यारे ते पूर्ण कृष्ण भावना प्राप्त करे छे। कृष्ण भावना मृत नु परिणाम एवं आवे छे के मनुष्य वधु ने वधु प्रबुद्ध थतो जाय छे अने थोड़ो समय माटे नहीं परंतु क्षणे क्षणे रोमांच सहित जीवन नो आनंद माने छे।
तो यहाँ पर ये स्पष्ट बताया है कि जो व्यक्ति ये भगवद गीता को सीखता है समझता है या गुरु परंपरा से इसका अनुभव प्राप्त करता है तो उसका परिणाम ये होता है कि वो आनंदामुदि वर्धनम प्रतिपदम हर कदम पर हर समय पर हर क्षण में उसका आध्यात्मिक आनंद बढ़ता जाता है। भक्ति मार्ग में आप जैसे आगे बढ़ते हो भगवान की सेवा के आप जितना आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने का अर्थ क्या होता है कि आपका उत्साह आपका आनंद आपकी आपकी प्रसन्नता ये दिन ब दिन आगे और बढ़ती जाती है। इसलिए कृष्ण भक्ति सदा सुख प्रदान करने वाली वस्तु है। अब यहाँ पर टेक्स्ट नंबर 77 में वो अपने हर्ष को पुनः दोहरा रहे हैं। टेक्स्ट नंबर 77 पढ़िए।
हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। प्रभु, ऐसा प्रतीत होता है कि व्यास की कृपा से संजय ने भी अर्जुन को दिखाए गए कृष्ण के विराट रूप को देखा था। निसंदेह यह कहा जाता है कि इसके पूर्व भगवान कृष्ण ने कभी ऐसा रूप प्रकट नहीं किया था, यह केवल अर्जुन को दिखाया गया था, लेकिन उस समय कुछ महान भक्त भी उसे देख सके तथा व्यास उनमें से एक थे। वे भगवान के परम भक्तों में से है और कृष्ण के शक्तिशेष अवतार माने जाते हैं। व्यास ने इसे अपने शिष्य संजय के समक्ष प्रकट किया जिन्होंने अर्जुन को प्रदर्शित किए गए कृष्ण के उस अद्भुत रूप को स्मरण रखा और वे बारंबार उसका आनंद उठा रहे थे।
तो व्यास ने इसे अपने शिष्य संजय के समक्ष प्रकट किया था, ये फिर से गुरु की कृपा से वो इस चीज को केवल सोचने मात्र से वो स्मरण किया, उन्होंने अद्भुत रूप भगवान का विराट अद्भुत तो आश्चर्यचकित हो गए और हर्षित होते गए कि वो कृष्ण इतने महान है, कृष्ण इज सो ग्रेट। दिस इज लाइक अ शांत भक्त के लक्षण यहाँ पर देखने को प्राप्त होते हैं। शांत भक्त जैसा अनुभव यहाँ पर किया जा सकता है। संजय वॉज कंसिडर टू बी इन शांत रस, ओ कृष्ण इज सो ग्रेट, कृष्ण इज सो ग्रेट। सो यस, चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं इसके संबंध में कि वास्तव में एक्चुअली विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपना जो भगवद गीता पर जो कमेंट्री लिखा था वो कमेंट्री उनका 73 श्लोक तक का ही है। अगर आप उनकी कमेंट्री देखोगे तो उसके बाद कमेंट्री लिखी ही नहीं है, 73 तक का। कोई कोई सोच सकता है कि मिसिंग है, मिसिंग है, नहीं, लेकिन उस कमेंट्री में ऐसा उन्होंने लिखा है कि अंत के पांच जो श्लोक है उस पर भी मैंने कमेंट्री तो लिखा था कि जो भगवद गीता का समग्र भगवद गीता का जो मुख्य हेतु है वो मैंने उसमें मेंशन किया था, लेकिन हुआ था ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर में कि चूहा आया था विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के पास और दो पेज जो उन्होंने अंत में लिखे थे वो उठा करके लेके चला गया था, हैंड रिटन कॉपी। तो उन्होंने अपनी कमेंट्री में लिखा है कि लॉर्ड गणेश जो है भगवान गणेश उन्होंने अपने वाहन को भेजा और मेरे दो पेज चुरा लिए थे, तो मैं इसको भगवान की योजना में कोई बाधा नहीं डालने के लिए मैंने फिर उसको वापस लिखा नहीं, और भले भगवान गणेश प्रसन्न हो और मेरा उनको प्रणाम है। इस तरह से मैंने सारार्थ वर्षिणी नाम का गीता पर का जो कमेंट्री है वो संपूर्ण किया है 73 में। सारार्थ दर्शिनी जो है वो श्रीमद् भागवतम की कमेंट्री का नाम है, और सारार्थ वर्षिणी जो है वो भगवद गीता की कमेंट्री का नाम है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा लिखे गए, और वो अंत में कहते हैं कि ये मेरा जो कमेंट्री भगवद गीता पर जिसका हमने पूरे कोर्स के दरमियान हमने इसका उपयोग किया है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के कमेंट का, तो वो आशीर्वाद देते हैं कि आपके हृदय में उसकी मधुरता हमेशा प्रकाशित होती रहे। इस तरह से उन्होंने अपनी कमेंट्री समाप्त कर दी थी 73 में। अब 78 नंबर का जो श्लोक है दैट इज लास्ट श्लोक है कि इसका क्या परिणाम प्राप्त हो सकता है इस गीता का, और जो पहला प्रश्न था कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो उसका उत्तर अब जाके संजय देना चाहते हैं। पढ़िए टेक्स्ट नंबर 78।
Wherever there is Krishna, the master of all mystics, and wherever there is Arjun, the supreme archer, there will also certainly be opulence, victory, extraordinary power, and morality. That is my opinion.
Yes, so जो धृतराष्ट्र ने कहा कि मेरे और पांडु क्या कुरुक्षेत्र के युद्ध में, तो जब एंटायर गीता सुना लिया संजय ने और लास्ट में बोल दिया कि यहाँ पर कृष्ण है वही विजय है, वही नीति है, वही धृति है, वही शक्ति है, वही ऐश्वर्य है, तो तुरंत धृतराष्ट्र की बची कुची जो आशाएं थी वो भी समाप्त हो गई। एक रूप से यहाँ पर भगवद गीता समाप्त हो रही है। बलदेव विद्याभूषण की कॉमेंट्री को भी हमने उपयोग किया था। बल्ले विद्याभूषण के द्वारा लिखी गई भगवद गीता पर जो कमेंट्री है उसका नाम है गीता भूषण। तो उन्होंने अपने अंत में कमेंट्री में ऐसा लिखा है उन्होंने कि भगवान कृष्ण की इच्छा रूपी जो नौका है उसका आधार लेकर के मैंने ये भगवद गीता का जो पूरा जो समुन्द्र है उसमें विहार किया, और मैंने बहुत सारे बहुमूल्य रत्न इस गीता के 18 अध्यायों में से प्राप्त किए। अब मैं इस ये समुन्द्र में इतना उसमें लीन हो चुका हूं कि अब मुझे यहाँ से बाहर आने की कोई गुंजाइश नहीं लग रही है कि, लेकिन एक ही अब प्रार्थना है कि I only hope that the cunning son of Nand Maharaj is pleased with me. अर्थात नंद महाराज का जो नटखट जो बेटा है वो मुझसे प्रसन्न हो जाए, और अगर मेरे द्वारा कोई त्रुटि हुई है, कोई गलती हुई है, तो मुझे क्षमा कर दे। So they are always eager to taste the sweetness of pure love for Sri Govinda, and their hearts are always melting with compassion. तो भगवान के दिव्य प्रेम का आस्वादन करने के लिए जो हमेशा लालयित रहते हैं और उनका हृदय हमेशा कृपा से भरे हुए हैं, ऐसे भक्त लोग मेरी गलतियों को क्षमा कर दे। सो इस तरह से बलदेव विद्याभूषण ने भी अपना अंतिम जो बात है वो उन्होंने लिखा है इस तरह से। सो लास्ट पैराग्राफ पढ़िए।
The living entity in his original situation is pure spirit. He is just like an atomic particle of the Supreme Spirit. Thus, Lord Krishna may be compared to the sun and living entities to sunshine. Because the living entities are the marginal energy of Krishna, they have a tendency to be in contact either with the material energy or with the spiritual energy. In other words, the living entity is situated between the two energies of the Lord, and because he belongs to the superior energy of the Lord, he has a particle of independence. By proper use of that independence, he makes under the direct order of Krishna. Thus, he attains his normal condition in the pleasure-giving potency.
Thus we end here the Bhaktivedanta purport on chapter 18 of Bhagavad Gita. इस प्रकार श्रीमद् भगवद् गीता के 18वें अध्याय उपसंहार संन्यास की विधि का भक्तिवेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। So we have completed the entire Bhagavad Gita with the purports by given by Srila Prabhupada, and we are very thankful to all of you कि आप भक्तों ने बड़ी संयम के साथ और बड़े धैर्य के साथ 2 साल तक मुझे झेला, और 2 साल पता नहीं 2 साल या 1.5 साल व्हाटएवर, लेकिन आप लोगों ने सहन किया, और अभी और एक मॉड्यूल के लिए भी आपको सहन करना पड़ेगा। लेकिन अभी तक हमने भगवद गीता नाम का जो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसकी चर्चा हमने पिछले 2-4 श्लोकों में भी प्रपा तात्पर्य में किए है कि ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, स्वयं भगवान के द्वारा बोला गया ग्रंथ है। इसको साधारण कोई सिंपल ऑर्डिनरी ग्रंथ मानने की गलती नहीं करनी चाहिए। इसलिए हमने पूरा प्रयास किया कि प्रभुपाद के तात्पर्य, प्रभुपाद की शिक्षाओं, बल्लभ विद्याभूषण, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और अन्य सभी वैष्णवों के द्वारा बताए गए जो भी अनुभव है और उनके जो टीका है उनका उपयोग करके हमने आपके सामने भगवद गीता के इन श्लोकों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया, और उसके साथ हमने प्रयास किया कि आप इसको आसानी से समझ पाए। इसके लिए हमने इसको थोड़ा सरल भाषा में प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया। सो इसके दौरान पूरा 18 अध्याय के दौरान अगर कोई त्रुटि हो समझाने में या व्यवहार में या बोलने में या कहीं पर भी, तो उसको ध्यान मत दीजिएगा, उसको क्षमा कर देना, क्योंकि ये ग्रंथ अपने आप में इतना पवित्र है कि बताने वाले की त्रुटि को ध्यान नहीं देना ही अच्छा है। सो वी आर वेरी थैंकफुल, आप सब भक्तों को बहुत धन्यवाद। और अब थोड़ा सा एक्सरसाइज हम करना चाहते हैं, उसके पहले अगर किसी को कोई प्रश्न है तो बोल सकते हैं।
प्रभु, आई हैव समथिंग टू से।
या प्लीज।
तो प्रभु, सबसे पहले तो हम मतलब सभी भक्तगण के बिहाफ पे मतलब बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं आपका, क्योंकि मतलब जो जिस तरह से मतलब भगवद गीता पे आपने जो हमें शिक्षा दी, मतलब ऐसा कभी मतलब मुझे पर्सनली, मैं कभी इतना डिटेल में इतना क्रिटिकली कभी स्टडी नहीं कर पाता, तो प्रभुपाद की कृपा से और सभी वैष्णव की कृपा से आपका हमें संग मिला और श्रवण करने को मिला, और जिस तरह से आपने इतनी अच्छी तरह से सभी उदाहरण के साथ, सभी आचार्यों की टीकाओं के साथ, और आपके इतने बिजी शेड्यूल में से भी, क्योंकि हमको पता है कि आप मतलब कभी कभी आपका एक दिन में 7-8 घंटा का लेक्चर हो जाता था संडे को और बाकी दिन भी, फिर भी आपने जिस तरह से हमको ये शिक्षा दी है उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और वी डोंट हैव एनी वर्ड्स टू थैंक यू. तो बहुत 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 धन्यवाद प्रभु. और हम मतलब चाहते हैं कि मतलब एटलीस्ट मैं ये चाहता हूँ कि ये आफ्टर दिस ऑल्सो जहाँ तक अभी ये सिचुएशन है तो कुछ ना कुछ हमें आपसे श्रवण करने को मिले. आई एम श्योर बाकी भक्तगण भी यही चाहते होंगे. तो दैट वी कैन कम अप विद समथिंग सो दैट वी कैन हियर फ्रॉम यू. थैंक यू.
ये तो भक्त का विनम्रता होता है कि जनरली वो अपनी दृष्टि, कुछ भक्तों की दृष्टि ही इतनी अच्छी होती है कि वो किसी को भी महान देख सकते हैं. सो वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर योर काइंड वर्ड्स. सो किसी को और किसी को कुछ प्रश्न है क्या?
मैं जिस तरीके से भगवद गीता समझा हूँ पहले मैं समझ ही नहीं पाया था. आपके द्वारा मैं जितना हो सके उतना ज्यादा भगवद गीता समझ पाया था. मैंने भगवद गीता जब पढ़ी थी तब मुझे इतना नॉलेज नहीं आया था, लेकिन आपके द्वारा जब आपके पढ़ाए हुए जो है उसमें से मैंने जो समझा वो सही तरीके से मैंने समझा है. और आपने जो पढ़ाया वो सही एकदम सही ज्ञान दिया है. इसके लिए मैं आपको भरी भरी धन्यवाद करता हूँ. और प्रभु मेरा एक प्रश्न है अभी पूछ सकता हूँ? हरे कृष्णा.
पूछिए.
गीता संजय ने भी सुनी और धृतराष्ट्र ने भी संजय ने धृतराष्ट्र को भी बताई, पर संजय में इतना बदलाव आया लेकिन धृतराष्ट्र में इतना बदलाव क्यों नहीं है धृतराष्ट्र महाराज में?
उत्तर भगवान, इसका उत्तर श्री प्रभुपाद जी ने भगवद गीता के पहले श्लोक के तात्पर्य में ही लिखा है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र वाले श्लोक में, कि धृतराष्ट्र जो था वो शरीर से तो नेत्र से तो अंध था ही था, लेकिन वो बुद्धि से भी अंध था, क्योंकि उसका जो मोह था, अज्ञान था, उसकी आसक्ति वो अपने शरीर के साथ संबंधित अपने पुत्र के प्रति और इस प्रकार की अज्ञान युक्त भावना से वो ग्रस्त था. तो इसके कारण वो भगवान की महानता को, भगवान के परामर्श को, भगवान की शिक्षाओं को ग्रहण करने में समर्थ रहा. यद्यपि ये उपदेश तो संजय ने भी सुना और ये उपदेश व्यास ने भी सुना, लेकिन संजय के हृदय में ये परिणाम प्राप्त हुआ क्योंकि उसके हृदय में कोई कपट नहीं था और वो कोई ढोंग नहीं कर रहा था, उसकी अज्ञानता समाप्त हुई थी और व्यास देव की कृपा प्राप्त थी उसको. लेकिन धृतराष्ट्र में ये नहीं था. अर्थात आप MP3 लेक्चर सुनते हो तो इसका परिणाम प्राप्त होता है, लेकिन MP3 लेक्चर ऑडियो लेक्चर से सुनना, लाइव सुनना बहुत ज्यादा अच्छा होता है. लाइव में प्रत्यक्ष होता है वो डायरेक्ट, वो रिकॉर्डिंग तो कोई भी सुन सकता है बाद में, लेकिन उसका परिणाम इतना अधिक नहीं मिलेगा जितना अधिक आपको लाइव हियरिंग में सुनना. कई बार हम भक्तों को पूछते हैं कि हाँ हम लोग रोज महाराज का लेक्चर सुनते हैं, प्रभुपाद का लेक्चर सुनते हैं, वैष्णव का ऑडियो MP3 सुनते हैं, वो ठीक है, वो अच्छा है, गलत नहीं है, वो इट इज वेरी गुड, लेकिन वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है जितना आप किसी भक्त के सामने जाकर बैठ करके आप सीखते हो, उतना इफेक्टिव वो नहीं होता है. इसलिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप सामने फेस टू फेस जाकर के आप उनसे सीखिए. धृतराष्ट्र का हृदय जो था वो अपवित्र था, इन अदर वर्ड्स वो मोहित था, भ्रमयुक्त था, इसलिए वो इसका पूरा आस्वाद नहीं प्राप्त कर सका. और कोई प्रश्न? सो you wanna have some exercise.